તારીખ 1/9/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 194 પર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 699
શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક હિન્દી પ્રત મેં 262 પાનો હૈ જીવ કો માર્ગ મિલા નહીં હૈ ઇસકા ક્યા કારણ અનંત કાલ મેં જીવ કો મોક્ષ માર્ગ નહીં મિલા હૈ અગર મિલા હોતા તો મોક્ષ કભી કા હો ગયા હોતા ધર્મ સાધન અનેક પ્રકાર કે અનંત બાર કિયે મોક્ષ કા ઉપાય માર્ગ માને ઉપાય જો મિલના ચાહીએ ઉન જીવ કો ક્યો નહીં મિલા પ્રશ્ન ઉઠાયા હૈ કૃપાલુદેવને ઇસકા બારંબાર વિચાર કર ઇસ વિષય મેં ગહેરાઈ સે બાર બાર વિચાર કરને પર યોગ્ય લગે તબ સાથ વાલા પત્ર કો સાથ કા પત્ર પઢે ઉન્હોને એક પત્ર ભેજા હૈ એનક્લોઝર એક સાથ મેં પત્ર રખા હૈ પઢ લેના તો કવરિંગ લેટર મેં વો લિખ રહે હૈ કે જીવ કો માર્ગ નહીં મિલા હૈ ઇસકા ક્યા કારણ ઇસ વિષય પર બાર બાર વિચાર કરના પર ઉસી વિષય પર હમને એક પત્ર લિખા હૈ જો સાથ મેં રખા હૈ ઉસકો પઢે અભી વિશેષ લિખને કી યા બતલાને કી દશા નહીં હૈ તો કવરિંગ લેટર મેં લિખતે હૈ કે હમ જ્યાદા અભી તો નહીં લિખેંગે તો ભી એકમાત્ર આપકી મનોવૃત્તિ કુછ દુખિત હોને કે હોને સે રુકે પત્ર લિખા હૈ લલ્લુજી સ્વામી કો કે તો ભી એકમાત્ર આપકી મનોવૃત્તિ કુછ દુખિત હોને સે રુકે ઇસલિયે યથા અવસર મેને અવસર દેખ કરકે આપકી યોગ્યતા કા અવસર દેખ કરકે કુછ યોગ્ય લગા સો સાથ વાલે પત્ર મેં લિખા હૈ હમકો જો યોગ્ય લિખા વો હમને લિખ દિયા હૈ હમેં લગતા હૈ કે માર્ગ સરળ હૈ માર્ગ ઇતના ટેડા નહીં હૈ યા માર્ગ મેં ઇતની કોઈ કઠિનાઈ ભી નહીં હૈ પરંતુ પ્રાપ્તિ કા યોગ મિલના દુર્લભ હૈ માર્ગ ઇતના કઠિન નહીં હૈ ક્યો કે ઇસ માર્ગ જો હૈ વો તો શાંત સ્વરૂપ હૈ જો મોક્ષ માર્ગ મેં આતા હૈ જી વો તો આત્મિક આત્મા કી સુખ શાંતિ કો પાતા હૈ આત્મા કે આનંદ કો અનુભવ કરતા હૈ તો માર્ગ મેં તો કોઈ કઠિનાઈ નહીં હૈ લેકિન ઇસકા યોગ બહુ દુર્લભ હૈ ઇસલિયે માર્ગ નહીં મિલા યોગ માને ક્યા વો વિષય પર 569 કા પત્ર અપને કો ચલા હૈ જિસકો હમ આત્મયોગ કહેતે હૈ ક્યા કહેતે હૈ આત્મયોગ યોગ શબ્દ કા પ્રયોગ કૃપાલુદેવને બહુત જગે વિધવિધ પ્રકાર સે અલગ અલગ શબ્દ કા સંયોજન કરકે બહુત પ્રયોગ કિયા હૈ ઓર બહુત અચ્છા બહુત બઢિયા પ્રયોગ કિયા હૈ તો આત્મયોગ શબ્દ ભી વહાં પ્રયોગ કિયા હૈ आत्मयोग माने क्या? कि आत्म कल्याण का योग, उसको कहते हैं आत्मयोग। योग शब्द मूल में तो युज धातु में से आया है, संस्कृत का कुछ धातु है व्याकरण में, वो मूल शब्द होते हैं। युज योज टू जॉइन, यहाँ से योग शब्द आया है, जोड़ान होना, आत्मा का जोड़ान होना। किसके साथ जुड़ान होना? दो प्रकार का जुड़ान है, अंतर और बाह्य में। अंतर में अपने आत्मकल्याण की भावना का योग होना, सच्ची भावना जो हमने 40 के आंक में पढ़ी कि अनंत जन्म मरण करी चुकेला ऐसा यह आत्मा की करुणा ऐसे अधिकारी जीव को आती है, वही कर्म मुक्त होने का अभिलाषी कहा जा सकता है, ऐसा वचन है कृपालु देव का। तो ऐसी कोई अंतरंग से उठी हुई आत्म कल्याण की, मोक्ष की भावना, अभिलाषा, एकमात्र अभिलाषा क्या होता है कि हम लोगों को भावना तो होती है, मंदिर जाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो भावना तो होती है कि हमारा भी कुछ कल्याण हो जाए तो अच्छा है, लेकिन हमारी दो घोड़े की सवारी रहती है। क्या होता है? दो घोड़े की सवारी। हमको संसार की अनुकूलता भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए, पर दो घोड़े की सवारी कोई कर नहीं सकता, और करना का प्रयास करे तो गिर जाता है, एक भी घोड़े पे नहीं रह सकता तो गिर। और ये हमारी हालत रही हमेशा, इसलिए हमको भावना सही रूप में नहीं हुई। भावना अवश्य हुई है किंतु सही रूप में नहीं हुई है, इसलिए मात्र मोक्ष अभिलाष ऐसा शब्द आत्मसिद्धि शास्त्र में एक शब्द आगे रख दिया है। मात्र, मात्र मैंने दूसरा कुछ नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, और एक ही चाहिए उतना ही नहीं, किसी कीमत में भी हमको यही चाहिए। किसी कीमत का मतलब वो है, ये तो सर्वोत्कृष्ट पद है जिसमें अनंत सुख मिलता है और अनंत दुख का नाश होता है, प्लस माइनस दोनों का लाभ है। अनंत दुख मिले नहीं और अनंत सुख मिल जाए, वरना अनंत दुख तो मिलने वाला है ही, तो इस नुकसान में से बच करके इतना बड़ा लाभ हुए, उसकी कीमत कितनी, कि उसकी कीमत कोई जगत के पदार्थ से तो मूल्यांकन की कर सके नहीं उतनी है। सिर्फ इसकी कीमत हम हमारी भावना से कर सकते हैं। वो भावना ऐसी होती है कि किसी भी कीमत पे हमको ये काम करना ही है, हमको कुछ नहीं गिनना है, यही काम एकमात्र करना है। इतनी बड़ी उपलब्धि हो तो हर हालत में किसी भी कीमत पे ये काम कर लेना है, ऐसी जो एक भावना होती है कोई इसके कीमत चुकाने के लिए पर्याप्त है। बोलो कितनी सस्ती बात हो गई थी, और वो हम कब कर सकते हैं? ये भावना हम अब कर सकते हैं, इसी वक्त कर सकते हैं, एट प्रेजेंट, वर्तमान मोमेंट में कर सकते हैं, ऐसी बात है। तो अंतर में ऐसी भावना होना और बाह्य में कोई आत्मज्ञानी पुरुष का, सत्पुरुष का संयोग मिलना, योग मिलना, दो बात एक साथ किसी धन्य घड़ी में हो जाती है तो जीव का छुटकारा हमेशा के लिए हो जाता है। ऐसे अंतर बाह्य योग को आत्म कल्याणकारी योग माने आत्म योग बोला गया है। बस फिर आगे का मार्ग बहुत सरल है। फिर मोक्ष पाने के लिए आगे का मार्ग बहुत सरल मैंने बहुत सरल है इसलिए सरल है कि आत्म शांति का एहसास आने लगता है और हमारा हौसला हमारी ताकत हमारा उत्साह एकदम बढ़ जाता है। इसलिए फिर कोई कठिनता लगती नहीं और सुख चैन से आनंद करते करते आत्मिक सुख का सुखामृत का अनुभव करते करते मोक्ष में आत्मा चला जाता है मोक्ष तक पहुंच जाता है। क्योंकि फिर तो आनंद ही आनंद और सुख ही सुख है फिर तो कोई तकलीफ है ही नहीं आगे तो मोक्ष मार्ग में तो है ही नहीं। आनंद से इसका प्रारंभ है और वो बढ़ता ही जाता है। इसलिए कहते हैं अपने अनुभव से हमें लगता है इसका क्या मतलब कि हमारा अनुभव बोलता है कि मार्ग तो सरल है किंतु प्राप्ति का योग मिलना दुर्लभ है। और प्राप्ति का योग में जो अंतर बाह्य दो योग है इसमें एक योग अनंत बार हो गया। सत्पुरुष तो क्या तीर्थंकर के समव शरण का योग भी अनंत बार हुआ है लेकिन हमको अंतरंग से सच्ची भावना कभी नहीं हुई है। ये लैकिंग पॉइंट है जो खूटती बात है वो उसी बात है। अगर यहाँ पर हम पहुँच गए तो बाकी की बात अपने आप है। इतनी तीन पंक्ति चार पंक्ति का पत्र लिख करके फिर उन्होंने संकलनकार ने जो साथ में चिट्ठी बीड़ी भेजी है उनको यहाँ लिख दी है। जिसको जरूरत लगती है और स्वलक्षी समझ से कुछ इस विषय में थोड़ा भी चंचुपात करते हैं तो भावना जागृत हो जाती है। भावना होने में कोई बड़ी बात नहीं है इतनी बड़ी बात नहीं है फिर भी अनंत काल में नहीं हुई है वो भी एक नक्कर सत्य हकीकत है कि अनंत काल में सच्ची भावना नहीं है। इसका कारण वो है कि जीव को दर्शन मोह से छूटना आसान नहीं है। आधार बुद्धि पड़ी है संयोगों की सुख बुद्धि बहुत है। सुख बुद्धि बहुत प्रगाढ़ है उतनी प्रगाढ़ है जिसका कोई अंदाज नहीं कर सके उतने संसार में सुख बुद्धि प्रगाढ़ है। इसका वो कारण है कि हमें सुख तो चाहिए और सुख के कारण हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पंचेंद्रिय के विषय को हम बार बार सुख के लिए चाहते हैं। सभी वक्त हमारी इच्छा के अनुकूल परिस्थिति बनती नहीं वो बात भी स्पष्ट है। क्योंकि इच्छा का कोई ठिकाना नहीं कब हो जाए, और जरूरी नहीं कि इसी वक्त सब चीज मिल जाए, पर नहीं मिलती है तब तो इच्छा होती है, चीज का संयोग नहीं है तब तो इच्छा होती है, मिलना नहीं मिलना कोई पक्की बात तो है ही नहीं, आकुलता बढ़ती है इस वक्त। जब ये मिलती है तब आकुलता थोड़ी शांत होती है, हमको सुख का अनुभव होता है, और हमारा जो सुख का कॉन्सेप्ट है और मजबूत और मजबूत और मजबूत हुए जा रहा है। ये परिस्थिति में इतना प्रगाढ़ हो गया है कि यहाँ से निकलना आसान नहीं है। कर्ता बुद्धि है, भोक्ता बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, बहुत सी बातें हैं। ऐसे दर्शन मोह के कारण रूप अनेक प्रकार के परिणमन से हमारी आत्मा घिरी हुई है। यहां से निकालना कठिन है, यहां से निकालना कठिन है, फिर भी असंभव और अशक्य नहीं है। और इस पत्र में एक बहुत सरल उपाय उन्होंने इस पत्र में रखा है। ये सबसे श्रेष्ठ भी उपाय है और सबसे सरल और सुगम भी है, बाकी के उपाय थोड़े कठिन भी है और दुर्गम भी है, ऐसी बात है। सरल इसलिए है कि वास्तव में हमको इसका मूल्यांकन होकर के इसकी जरूरत लगनी चाहिए। बात तो उतनी सरल है, अगर वो लगता है, मूल्यांकन आता है, तब तो हम उसी के अनुपात में प्रयास किए बिना नहीं रहते। जैसे हमको एक दिन में 10 करोड़ मिलता है, 50 करोड़ मिलता है, शर्त वो है कि आपको खाए पिए नींद किए बिना एक दिन पूरा अटेंड करना पड़ेगा। जिस काम के लिए आपको बुलाए हैं उस पर आपको अटेंड होना है, तो एक दिन तो आपको खाना पीना सोना सब बंद हो जाएगा, तो क्या आप मंजूर करोगे कि नहीं करोगे? एक दिन क्या, 2 दिन मांग लो, 3 दिन मांग लो, क्या बोलेंगे? हाँ, अगले ने 1 दिन मांगा है, आप क्या ऑफर करेंगे? 2, 3, 4, 5 कोई बात नहीं। अगर इतनी बड़ी बात है तो हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि इसका मूल्य हम समझते हैं। 10, 20, 25, 50 करोड़ का मूल्य हम समझते हैं, मोक्ष का मूल्य हम समझते नहीं। जिसके आगे 10, 20 करोड़ नहीं, 25, 50 अरब कुछ नहीं है, कुछ है ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी ये बात जबरदस्त है, लेकिन हमको सही मूल्य नहीं आया, यही कारण है इसका। सही मूल्य आने से जीव का स्वभाव ऐसा है कि उसको खुद रोकना चाहे या कोई भी दुनिया की ताकत या परिस्थिति प्रतिकूल होकर के रोकना चाहे, रोक नहीं सकता, खुद ही नहीं रोक सकता और दूसरा भी नहीं रोक सकता, ये जीव का स्वभाव है। बात रही सही मूल्यांकन की, एक दफे शांति से सोच करके विचार करके सही मूल्यांकन में आना है। ये मूल्यांकन करने वाला ज्ञान कहो या सही समझ कहो, वो पुरुषार्थ को भी जागृत कर देगी, रुचि को भी जागृत कर देगी, सब भावना को भी उठा लेगी, सब कुछ कर देगी। भावना लानी नहीं पड़ेगी, रुचि करनी नहीं पड़ेगी, पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा, सब होने लग जाएगा। ऐसी बात है। और आप इसके पीछे पागल होकर के काम करोगे, कैसे होकर के? दुनिया ये कहेगी कि ये पागल हो गया है, तो आप कहोगे कि हमको मंजूर है ये पागलपन, लेकिन हमको ये करना है। ये बात आएगी क्यों? कि इसका जो नतीजा है, इसकी जो फल है, उपलब्धि है, वो उतनी बड़ी है, कोई सामान्य बात नहीं है। अनंत काल में नहीं की है ऐसी कोई सबसे बड़ी बात है, इससे आगे कोई बड़ी बात है ही नहीं, विश्व में नहीं है, इतनी बड़ी बात है। और इसका मौका हमको आज लग गया है, ये मालूम पड़ना चाहिए। क्या? कि आज हमको इसका मौका है, पूरा पूरा मौका है, अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। मूल्यांकन करने में क्या आपत्ति है बताइए आप? किसी को भी इसका मूल्यांकन करने में कोई आपत्ति हो तो बता दीजिए। चलो बता दीजिए। हाँ, फिर भी जीव नहीं करता है तो इसकी सरलता नहीं है खुद की, स्वयं के आत्मकल्याण में सरलता नहीं है तो कहाँ सरलता होगी, फिर कहाँ अपेक्षा रखे फिर? जी मने नथी मूल्यांकन नथी आवतो, भौतिक सुखनो कॉन्सेप्ट से ही ढीलो नथी पड़तो। भौतिक जो सुख छे, बारमा जे सुखना साधनों, सुखनी परिस्थिति, सुखना संयोगो, थोड़ी एमने साथे बात करीस। ई जे कॉन्सेप्ट छे ई ढीलो नथी पड़तो। तमारा भावोने तपासी जोजो, मने एटलो परिचय नथी पण हकीकत आम ज होई शके, बीजी रीते होई शके ने, તપાસી તમારું જે રહેવું છે એવા જ માહોલમાં છે, અમેરિકાની અંદર, યુરોપથી પણ વધારે ખરાબ પરિસ્થિતિ છે, એટલે ત્યાંનું જે માહોલ છે, ત્યાંની જે પરિસ્થિતિ છે, અને આપણો જે કોન્સેપ્ટ છે એ દિન પ્રતિદિન દ્રઢ થઈ જાય ને ઢીલો ન પડે ત્યાં સુધી આપણી વિચારશક્તિ યથાયોગ્યપણે કામ કરતી નથી। आपको बीमारी पसंद नहीं है, पसंद है क्या? है? आपको बीमारी पसंद नहीं है, फिर भी आप अपनी बीमारी को मिटा सकते हैं क्या? आपको एक दिन भी लंबा नहीं है क्या कि हमको बीमारी चालू रहे? है? फिर भी से है इसका कोई समाधान नहीं है आपके पास, है कोई नहीं समझा? अब आपको बीमारी ही नहीं आए या किसी भी प्रकार का दुख या क्लेश या उलझन मुंझवण आकुलता कुछ होवे ही नहीं, ऐसी परिस्थिति में आप आ सकते हो, ऐसा कोई चांस है, तो इसका कितना मूल्य देने के लिए आप तैयार है बताइए। देख लो, आपको तलाश कर लो अपने विचार शक्ति में, आपको क्या विचार आता है देखो आप। ये जैसे सर्व दुख थी अने सर्व क्लेश थी मुक्त થવાનો ઉપાય એક આત્મજ્ઞાન છે। પહેલે તો ઈશ વચન પર हमारा विश्वास है कि नहीं है, और वो विश्वास जमता है कि नहीं जमता है। अगर ऐसी बात है तो हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सके ऐसी सानुकूल परिस्थिति में आ चुके हैं। और क्या चाहिए आपको? चाहिए अपनी सही भावना, चाहिए इस विषय का सही मूल्यांकन, बस इतना हो गया। आगे का परिणाम सहज सहज आगे बढ़ने वाला है। देखो आपकी विचार शक्ति किस तरह काम करती है, कहाँ मोड़ लेती है। एक मोड़ संसार का है, दूसरा मोड़ मोक्ष का है। आपको तुलना करके अपना सुख के लिए, अपना हित के लिए निश्चय करना है, निर्धार करना है कि हमें क्या करना है। आज करो, कल करो, इस भव में करो, दूसरे भव में करो, या लाख भव के बाद करो। जब करोगे तब काम होने वाला है, निर्धार किए बिना कोई काम होने वाला है। पूरा विचार करके निर्धार करना है, अधूरा विचार इसमें काम नहीं आता। क्यों? कि अधूरा विचार से कोई निर्धार करता है तो वो टिक नहीं सकता, टिक पाता नहीं, डिग जाता है। इसलिए शांति से, अभी शांति का समय है अपने पास, शांति से विचार करके एक निर्धार पर आना चाहिए कि हमें किसी कीमत पे ये काम कर लेना है। बस फिर मार्ग बहुत सरल है, और यही बात का अनंत काल में लैकिंग रहा है तो इसी बात का रहा है, और कोई बात नहीं है। इस विषय पर, इस मार्ग को और सरल करने के लिए एक और भी उपाय बताया है, वो साथ वाली चिट्ठी में बताया है लल्लू जी को। पत्र लिखने के पहले अपनी भावना को व्यक्त किया है, सत स्वरूप को अभेद भाव से और अनन्य भक्ति से नमो नमः। सत्स्वरूप मैंने अपने आत्मा, सत्स्वरूप मैंने शाश्वत त्रिकाली अपना आत्मा, उसको अभेद भाव से मैंने, विकल्प में भेद भाव है, विकल्प में भेद भाव है, और निर्विकल्प दशा में अभेद भाव है। क्यों? कि जो अपना ही स्वरूप है उसके लिए विकल्प क्या उठाना। खाना खाने में मेहमान को आग्रह किया जा सकता है, घर वालों को नहीं। हाँ। घर वाले तो अपने हाथ से कभी भी कहीं भी चीज़ खाने के मन होता है अपने आप उठा करके खा लेता है या पूछ करके ले लेता है, हमको भूख लगी हम खा लेंगे, हमारा घर है, हमको ज़रूर नहीं कि आप बोलो तभी खाएंगे वरना नहीं खाएंगे, मेहमान हैं, उसमें उतना अंतर रहता है, खिलाएंगे तो खाएंगे, नहीं खिलाएंगे तो नहीं खाएंगे, पुरस्कार करेंगे तो खाएंगे, नहीं पुरस्कार करेंगे तो मांगेंगे भी नहीं। और बाहर में आदर मेहमान का होता है, घर वालों का नहीं होता है। फिर भी आत्मीयता घर वालों से होती है, मेहमानों से नहीं होती। देखो कैसा विचित्र ढंग है ये। हाँ, ऐसे दिखाव तो विकल्प का होता है, अभेद भाव को कोई समझते नहीं कि अभेद भाव कैसा होता है, भेद भाव को समझते हैं क्योंकि इसका परिचय है। और अभेद भाव है वो वचनातीत है, मनातीत है और सिर्फ अनुभव के योग्य है, इसलिए वो अनुभव के बिना यथार्थ रूप से तो समझा नहीं जाता, समझ में आता नहीं, ऐसी बात है। तो कहते हैं कि हमारे जो आत्मा है उसको अभेद भाव से और अभेद आये बिना रह नहीं। नमो नमः, मैं नमता हूँ, नमस्कार करता हूँ, मैं ढलता हूँ, झुकता हूँ, मेरे स्वरूप के प्रति मैं बहुत भक्ति से, अत्यंत भक्ति से, अनन्य भक्ति से, अभेद भाव से नमस्कार करता हूँ, झुक जाता हूँ। झुकता हूँ तो भेद विकल्प का भेद भी नहीं रहता है, एक स्वानुभूति का विषय है। पत्र के हेडिंग में उस बात को, अपने परिणमन को लिख करके फिर आगे की बात लिखते हैं। कहने का आशय वो है कि अंतर किसके साथ होता है, पराये के साथ होता है, अपने वालों के साथ नहीं होता। ऐसे आत्मा तो अपना स्वरूप है, इसमें अंतर कैसा हो सकता है, उससे तो अभेद भाव ही होना चाहिए। इसका हम विकल्प उठाते हैं कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, वो अंतर पड़ता है, वो अन्य भाव है, अनन्य भक्ति नहीं है, अभेद भाव नहीं है, वो भेदभाव है। तो भेदभाव तो परायों के साथ होता है, अपने वालों के साथ होता ही नहीं, ये तो अपना ही स्वरूप है, वो कहने का आशय। अब ऐसे सत्स्वरूप की प्राप्ति किसको होती है और किसको नहीं होती है, उस विषय में लिखते हैं। जो निरंतर भाव अप्रतिबद्धता से विचरते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष के चरणारविंद के प्रति अचल प्रेम हुए बिना और सम्यक प्रतीति आए बिना सरसत स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, और आने पर अवश्य वह मुमुक्षु जिसके चरणारविंद को उसकी उसने सेवा की है उसकी दशा को प्राप्त होता है, पाता है। बस एक वचनामृत में पूरी पूरी बात, सारा पत्र का जिष्ट इधर है, सारा पत्र का यही जिष्ट है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो भाव अप्रतिबद्धता से विचरते हैं। मतलब क्या है कि इसके भाव में प्रतिबद्धता नहीं है किसी के साथ, सब ज्ञान के ज्ञेय है, अपने स्वरूप स्वज्ञेय है और दूसरे पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय है, कहीं भी वो प्रतिबद्ध होते नहीं। क्यों? कि कहीं भी सुख दुख की कल्पना उनको होती नहीं है, बस बात खत्म। ऐसे जो ज्ञानी पुरुष है, आत्मज्ञानी पुरुष है, उसके चरणारविंद के प्रति अचल प्रेम हुए बिना वो इसलिए लिया है कि उनके आश्रय में, उनके चरण शरण में आत्म कल्याण करने वाला जीव चला जाता है, उनको ये भाव आता है कि मेरे को तो और कुछ जानना नहीं है, समझना नहीं है, बस आपके शरण में आ जाना है, बात खत्म। बस एक में सब काम हो गया उसका, और आनुषंगिक परिणाम लिया है, सम्यक प्रतीति आए बिना। सम्यक प्रतीति माने क्या? यहां सम्यक तो मुमुक्षु को प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन यथार्थ प्रतीति को यहां सम्यक प्रतीति कहते हैं, और ये यथार्थ प्रतीति पहचान से होती है, बिना पहचान होती नहीं। जिस मुमुक्षु ने ज्ञानी पुरुष की अंतर परिणति से ज्ञानी पुरुष के अंतर में विराजमान परमात्मा का दर्शन किया, क्या हुआ? परमेश्वर बुद्धि कल्पना से नहीं आती है, वास्तविकता इसमें वो है कि ज्ञानी पुरुष की जो अंतर परिणति है वो, उसका जुड़ान, उसका योग अपने निज परमात्मा के साथ होता है, वो परिणति प्रकट है। परमात्मा भले ही यह प्रकट है, लेकिन परिणति में वो प्रकट हो गया है, तो उस परिणति के माध्यम से उनका ज्ञान है वो वहां तक पहुंचता है। वो बात कृपालु देव ने 223 नंबर के या 25 नंबर के पत्र में किया है। दो सौ तेईस। परमात्मा और आत्मा का एक रूप हो जाना यह पराभक्ति की आखिरी हद है, तो उसको अनन्य भक्ति कहा हेडिंग में, आत्मा का और परमात्मा का एक रूप हो जाना, तदाकार हो जाना, एक यही लक्ष्य रहना सो पराभक्ति है। परम महात्मा गोपांगनाए महात्मा वासुदेव की भक्ति में इसी प्रकार से रही थी। वो दृष्टांत दे देते हैं भागवत का, श्री कृष्ण की भक्ति में जो गोपांगनाएं रही थी वो इस प्रकार से रही थी। परमात्मा को निरंजन और निर्देह रूप से चिंतन करने पर यह लय आना विकट है, भक्ति की लय होती है। जैसी लय गोपांगनाओं को थी, ऐसी लय आना बहुत विकट है निज परमात्मा के विषय में, क्योंकि वो निरंजन है, निराकार है, निर्देह रूप में निराकार है, तो ऐसे लय आती नहीं, अप्रगट है। इसलिए जिसे परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, जिसे परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, ऐसा देहधारी परमात्मा, फिर देहधारी ज्ञानी नहीं कहा वहां, क्यों कि इसकी परिणति के दौरान परमात्मा को देखा है, इसलिए वहां ज्ञानी शब्द नहीं प्रयोग किया। ऐसे देहधारी परमात्मा उस पराभक्ति का परम कारण है, अगर मिल जाता है तो वो एक परम कारण मिल गया। उस ज्ञानी पुरुष के सर्वचारित्र में एक भाव का लक्ष्य होने से उसके हृदय में विराजमान परमात्मा का एकपना होता है, और यही पराभक्ति है। वो हृदय की बात इधर किया है, क्योंकि अंतर परिणति का विषय ही निज परमात्मा है, और परिणति सदृश होती है, जैसा परमात्मा है ऐसी परिणति है, भाव में कोई फर्क नहीं, इसलिए परमात्मा प्रकट हुआ ऐसा भी कहने में आता है। ये परमात्मा का प्रकट दर्शन कहो या साक्षात्कार कहो, एक ही बात है। तो ऐसी पहचान में ये सम्यक प्रतीति आती है, ऐसी भक्ति भी आती है, और वो मुमुक्षु इसके चरण में चला जाता है। ऐसा हुए बिना सत्स्वरूप में आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे हुए बिना नहीं, और आने पर अवश्य होती है। ऐसी प्रतीति आए और नहीं होवे ऐसा नहीं बनता, और नहीं आए तो हो जाए ऐसा नहीं बनता। बस मुद्दे की बात बता दिया, और इस मुद्दे पर कृपालु देव का इतना वजन है कि उन्होंने इस वजन को स्पष्ट करने के लिए को एक कोड़ाकोड़ी सागर का इतिहास लिख दिया, तीन दृष्टांत में, कि सुयोगदांग सूत्र में ऋषभदेव भगवान ने जहाँ 98 पुत्रों के उपदेश दिया है और मोक्ष मार्ग चढ़ाया है, वहाँ यही उपदेश दिया है, जो ये वचनामृत किया है वही उपदेश दिया है। और सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी, सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को उपदेश देते हैं कि वारंवार जगत का जिन्होंने दर्शन किया ऐसे महावीर भगवान ने हमें इस प्रकार कहा है कि गुरुओं के अधीन होकर आचरण करने वाले अनंत पुरुषों ने मार्ग पाकर मोक्ष प्राप्त कर लिया है। तो एक दृष्टांत दिया ऋषभदेव स्वामी का, प्रथम तीर्थंकर का, एक दृष्टांत दिया अंतिम तीर्थंकर का और अंतिम केवली का कि भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे और जो जम्बू स्वामी थे वो अंतिम केवली थे। तो सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को ये बात कही थी, दोनों मोक्ष में गए, इसी काल में गए, और ये चतुर्थारा में, पंचम कारा में गए, वो चतुर्थारा में जन्म लिया और पंचमारा में मोक्ष गए। ये जम्बू स्वामी 84 मथुरा से गए ना, हम अभी जाके आए, आगरा से मथुरा आते हैं तो मथुरा सिटी के बगल में ही ये अपना स्थान है, जहाँ से वो मोक्ष पधारे, उनके चरण चिन्ह वहाँ रखे हैं और मंदिर भी बना है। और अपना एक शिविर भी मथुरा 84 में वहाँ हुआ, एक शिविर वहाँ हुआ था। एक कोड़ा कोड़ी सागर पे के पहले ऋषभदेव स्वामी हुए, अंतिम तीर्थंकर और अंतिम केवली हुए। थ्रू आउट यही मार्ग है ऐसा कहते हैं। बस जो कहने का था वो कह दिया, जो कहने का था वो कह दिया उन्होंने। और उसके सपोर्ट में पूरा इस 24 का इतिहास बता दिया, इसके सपोर्ट में इस 24 का इतिहास बता दिया। और उन्होंने कहा कि सर्वस्थल में ये बात है, आना ये धम्मो और आना ये तव, धर्म भी आज्ञा है और तप भी आज्ञा ही है, सर्वस्व आज्ञा ही है, बात खत्म हो गई। हाँ, अचल प्रेम हुई भी, जब सम्यक प्रतीति आती है तो उतना अचल प्रेम होता है कि हर हालत में वो चलित नहीं होता, हर हालत में वो चलित नहीं होता। जैसे माँ को अपने बच्चा जो है उस पर कितना प्रेम आता है, उसको हर प्रकार की सेवा करनी पड़ती है ना, 6 महीना 12 महीना का होता है, कितना अच्छा लगता है। अपने गुजराती में मने बहु वालो लागे, हूँ के मने अमारो बाळक छे बहु वालो लागे, एम ज किए ने। तो भाई वालो लागवानो कारण हूँ छे मने तो तमे समजावो ने, ચાલો પૂછો એને, માને એ તને તારું બાળક વાલું લાગવાનું શું કારણ છે? એવું જરૂરી નથી કે રૂપાળું હોય, સર્વગુણ સંપન્ન હોય, એવું કોઈ જરૂરી નથી। હે સિદ્ધિભાઈ ને સિદ્ધકાવાલા, નિગ્રહ હોતે ને ઇસકો સિદ્ધિ કહેતે મારે ગુજરાતી મેં, તો ઇનકે બચ્ચે ઇનકે લાયક હોતે હૈ, काले होते हैं, बड़े बड़े होठ होते हैं, उसके स्वरूपवान नहीं होते हैं, फिर भी उनको तो बहुत प्रिय लगता है, वो अपना बच्चा है ना, इसलिए उनको बहुत प्रिय लगता है। क्या कारण है बताइए ना। प्रिय लगने का, प्यार होने का कारण क्या है वो बताइए, कोई ठोस कारण हो तो बता दीजिए, क्या कारण है? अपने बच्चे, अपने लड़के अपने को अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? पड़ोसी के कितने भी होशियार हो, अच्छे हो, रूप स्वरूपवान हो, गुणवान हो, सब तरह से अच्छे हो, फिर भी अपने बच्चे के बराबर प्रिय लगते हैं क्या? हैं, आपको कारण तो बता दीजिए। हैं, मेरा बनाया, ये कोई ठोस कारण है क्या? हाँ, इसका कोई 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 वाजिब कारण है क्या? हाँ, बात तो कोई रीजनेबल तो करिए। हाँ, वहां हमको कोई कारण देने की जरूरत नहीं है, कोई भी कारण बारण कुछ नहीं समझते, हमको अच्छा लगता है वो बात बराबर। हो सकता है कि बड़ा होकर लात भी मारे। हो सकता है कि बड़ा होकर के लात भी मारे, घर से भी निकाले। हाँ, हो सकता है। हमने एक प्रसंग देखा था हमारे वहाँ पड़ोस में, ब्राह्मण फैमिली थे, काशी में वेद भणकर के आए थे, छोटे गांव में तो कोई काशी में वेद पढ़कर आते हैं, उसका मान सम्मान अच्छा रहता है। और वैसे पर्सनालिटी वाला आदमी था, उनको बहुत बड़ी उम्र में एक बच्चा हुआ, कोई परिवार में कोई था ही नहीं, ये बहुत बड़ी उम्र में एक बच्चा हुआ, बहुत आनंद आनंद बहुत खुशी हो गया। लड़का भी ऐसे पर्सनालिटी से तो अच्छा ही था, लेकिन बड़ा होने में थोड़ा आउटलाइन हो गया, तो उसकी जो सब संपत्ति है वो ख़त्म कर दी। तो बोले कि अब तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तो मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं दूंगा। बोले कि नहीं, तुम्हारे पास है तुमको देना ही पड़ेगा, तुम है फिर देते नहीं हो। मारने लगा, पैसा दो वरना मारूंगा, पैसे दो हमको जरूर है मारूंगा मैं। वो जुआ खेले कहीं भी पैसा को तो ख़त्म करता था। तो वो बूढ़ा था आदमी, मार खाना पड़ता था, वो जवान था, लड़का जवान हो गया, बाप बूढ़ा हो गया और वो मार मारने लगा। जब पैदा हुआ तब उसका आनंद का कोई पार नहीं था, वही बच्चा का वो जिस हालत में वो परिस्थिति बनी थी उसको बहुत बहुत दुखी थे। मैंने वृद्धावस्था में वो बहुत दुखी था, फिर भी जब वो जब छोटा था कितना उसको अच्छा लगता था। देखो अच्छा लगने का कोई रीजनेबल बात तो करिए आप, बताइए क्या है कारण है। हाँ, बिना कारण भी आपको अच्छा लगता है तो यहाँ तो आपको सर्वोत्कृष्ट सिद्धि होने वाली है, तो लगे ही अच्छा है, इसमें क्या बात है। जिस कारण से सर्वोत्कृष्ट सिद्धि हो जाए, ऐसे जिसको परमात्मा के स्वरूप में देखा जाता है वो तो अच्छा लगे ही लगे, इसमें क्या बड़ी बात है, तो रीजनेबल बात है। वो तो अनरीजनेबल बात थी, ये तो रीजनेबल बात है। तो अचल प्रेम आता है तो हर हालत में वो प्रेम दिखता नहीं है, चलित नहीं विचलित नहीं होता है, ऐसी एक परिस्थिति आती है। तो अन्याय करे तो भक्ति है, वो उपकार बुद्धि से आती है, भक्ति है वो उपकार बुद्धि से आती है। तो प्रेम तो एक अलग चीज है, ये बहुत सुप्रीम क्वालिटी के जीव के फीलिंग के परिणाम होते हैं, वो बात है, वो बात ही कोई अलग है। तो एक कोई समझने समझाने का विषय नहीं रहता, ये तो अनुभव का ही विषय रहा है हमेशा। तो ऐसी परिस्थिति में वो तो दृष्टांत देते हैं, इसलिए वही मैं कहने जा रहा था कि कोई अन्याय कर दिया, सत्पुरुष ने ज्ञानी पुरुष ने सरासर अन्याय किया है, इस परिस्थिति में तो प्रेम विचलित होगा कि नहीं होगा। पूछ लीजिए सीता जी को, जब रामचंद्र जी ने उसको जंगल में भेज दिया, विचलित नहीं हुई वो। वो क्या बोली, डायलॉग बहुत अच्छा दिया है रामायण में, मेरे हृदय में रामचंद्र जी के विषय में उतना ही प्रेम है जितना मैं महल में रहती थी उस वक्त था, और इनके हृदय में मुझे यहाँ भेजने के समय में अभी भी मेरे लिए तो उतना ही प्रेम है, इसका मुझे विश्वास है। इसको कहते हैं अचलित प्रेम, बाकी तो विचलित हो ही जाते हैं लोग, इसका कारण सम्यक प्रतीति नहीं आई। ये दो बात साथ में होती है हमेशा हमेशा, आनुषंगिक परिणाम है, अविनाभावी होते हैं, और जब होते हैं तब सत्स्वरूप की प्राप्ति हुए बिना रहती नहीं, और उसके बिना सत्स्वरूप की प्राप्ति होती नहीं, बस ये फुल एंड फाइनल बात है, फिर आगे की बात इसी के सपोर्ट में विस्तार से कृपालु देव ने की है, कल के स्वाध्याय में लेंगे।
निरखी निरखी मन हर मूरति को